ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदाय कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदाले कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया कर्वो विनेहु तं सर्वभूतानां मुनिमानतोऽस्मि तवैवास्मि तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञेयाधि तं नयमाम चरणं सर्वप्रथम मैं अपने परमाराध्यतम गुरुदेव नित्यनिगा प्रविष्टम विष्णुपाद श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि बार दंडवत प्रणाम की ज्ञान करता हूँ। तत्पश्चात उपस्थित त्रिनंदीपाद गण वैष्णवगण वैष्णवीगण उपस्थित श्रोतागण सब लोगों को यथा योग्य अभिनंदन ज्ञापन करता हूँ। जिन लोगों ने यहाँ जम्मू में इस धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन किया है उनको मैं अपना हार्दिक धन्यवाद और अपना आशीर्वाद ज्ञापन करता हूँ। जगत में सुख शांति और लौकिक पारलौकिक समस्त कल्याण का संभव भगवत कथा से बिना हरिनाम आश्रय किए और बिना हरि कथा का श्रवण किए हुए वो भी संतों के मुख से शुद्ध संतों संसार के दुख दर्द सभी मिट जाते हैं। जन्म मृत्यु के लगातार कष्ट और दुख सब दूर हो जाते हैं और भगवान के चरणों में हेतु की भक्ति हो जाती है। इसलिए जो लोग वृंदावन मथुरा इत्यादि स्थानों से जो आए हुए हैं उनकी हरि कथाओं को सुनेंगे, सुनना माने पालन करना, एक आंख कान से सुनना दूसरे से बाहर कर देना नहीं। जो हरि कथाएं होंगी जैसा श्रीमद् भागवत शास्त्र इत्यादि कह रहे हैं, गीता शास्त्र कह रहे हैं, उनके आचरण को करना चाहिए। यदि पहले से कुछ बुरा अभ्यास हो गया है तो उसको भी छोड़ो और छोड़ कर अपने जीवन के कल्याण के लिए लौकिक पारलौकिक कल्याण के लिए भागवत के कथानुसार अपना जीवन बताओ बिताओ तब ये जर्मन का चक्कर और क्लेश दूर हो सकता है और दूसरा कोई उपाय नहीं। एक समय की बात है, आज से 5000 वर्ष लगभग पहले कृष्ण के अप्रकट लीला में प्रवेश कर जाने पर जब कृष्ण गोलोक वृंदावन चले गए यहाँ छोड़ करके धरती को तो कलयुग ने प्रवेश किया। उस समय कलयुग के डर के मारे हमारे भारत के 88,000 ऋषि लोग गोमती नदी के किनारे नैमिषारण्य क्षेत्र में उपस्थित हुए और सुख गोस्वामी से प्रश्न किया भयंकर कलयुग आ रहा है, उसके चपेटे में सभी लोगों को आना पड़ेगा। भजन साधन नहीं करने देगा, स्त्रियां बिगड़ जाएंगी, पुरुष लोग का स्वभाव नष्ट हो जाएगा, सदाचार विहीन हो जाएंगे, बहुत कम रहेंगे जो सदाचार संपन्न रहेंगे और स्त्रियां विदुषी रहेंगी। बचपन से ही लड़के माता पिता के विरोधी और मद्यपान इत्यादि, तंबाकू पान प्याज रस इत्यादि खाएंगे और लड़ेंगे। आप व्यास के पुत्र सुखदेव गोस्वामी के शिष्य हैं और बलदेव जी के कृपा स्फूर्ति आप पर हुई है, आप समस्त शास्त्रों को जानते हैं, समस्त प्रकार के संदेहों को मिटा सकते हैं। इसलिए आपसे निवेदन है, जो हम जगत के लिए कल्याणकारी है उसे बताइए, जिसे आत्मा प्रसन्न हो, शरीर के लिए नहीं पूछा, उसे आत्मा प्रसन्न हो। विशेषकर प्रायण अल्प आयुषण योगेश्मिन कलाश्मिन
योगेश्वर,
इस कलयुग में आयु बहुत कम हो जाएगी। सत्ययुग में लाखों वर्षों की आयु होती थी, त्रेता में रामचंद्र जी ने 11,000 वर्ष तक राज्य किया और कितने दिन तक रहे, सारी लोगों की ये दशा थी। द्वापर में बढ़कर के 1,000 के करीब में आयु रह गई और कलयुग में कोई ठीक नहीं, पिता के सामने ही माता के सामने ही पुत्र मर जाते हैं, बाबा रहते हैं पितामह और ये लोग मर जाते हैं, कोई गर्भ में ही मर जाते हैं, कोई कुछ होता है, जो रहते हैं वे भी व्यभिचारी बन जाते हैं। मंदभाग्या मंदाक्ष मंद मतयो, बड़े मंदभागी हैं, करते हैं अच्छे के लिए तो बुरा हो जाता है। और बहुत प्रकार के उपद्रव हैं, पड़ोसियों से लड़ाई झगड़ा, जैसे देख रहे हैं आजकल पाकिस्तान हिंदुस्तान पड़ोसी, वैसे घर के पड़ोसी लोगों में भी लड़ाई झगड़ा, यहाँ तक कि पति और पुत्र स्त्री में तलाक इत्यादि हो रहे हैं। पश्चात देश की हवा इधर की खूब जोरों से आ रही है, अभी जैसे स्त्रियां हैं आगे 10-20 वर्ष के बाद में देखेंगे, न जाने क्या होगा, 5-7 पति करेंगी न क्या करेंगी, वही जाएंगे, कोई अंकुश नहीं रहेगा। उपद्रव और दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, अभी देख रहे हैं आसाम में बोर्डो की तरफ में और बंगाल के बॉर्डर पर इधर उधर कितने, नेपाल में, अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में, ईरान में, यूरोपियन कंट्रीज में, रशिया तक में, अमेरिका में भी क्या क्या हो। यह कलयुग का प्रभाव है, इसको कोई रोक नहीं सकता। जो आत्मसंयम करेगा, इन कथाओं को सुनेगा तो हो सकता है। तो आप इस अवस्था में बतलाइए हम लोगों का कर्तव्य क्या है, हम उसका पालन करेंगे, जिसे कि आत्मा प्रसन्न हो। एक बात समझ रखिएगा, हम लोग बार बार कहते हैं, शास्त्र भी कहती है, गीता इत्यादि सभी भागवत कहते हैं, ये शरीर मैं नहीं हूं, ये हाड़ मांस रक्त पेशाब पैखाना की एक थैली है, इसमें आत्मा परमात्मा दोनों हैं। जो मनुष्य जन्म लेकर के इनको पहचान लिया और इसको पहचानने के लिए भजन कर लिया, वो तो उनका जीवन ठीक हो जाएगा, सफल है। और जो लोग इस हाड़ मांस थैली को, पैखाना और टट्टी की थैली को ही मैं समझ लिया, जिसको कहते हैं शुद्ध शब्दों में देहात्मवाद, देह में ही आत्मा का विश्वास करने वाले, अधिकांश कलि युग में बहिर्मुख लोग ये ऐसे ही जो जानते भी हैं किंतु काम पर भूल जाते हैं। इसलिए यह शरीर हम नहीं है, इसके अंदर में है भगवान ने कृपा करके बिना किसी कारण के ही हमें मनुष्य दंत ये शरीर दिया, और इसमें लेकर के साधु संतों का संग नहीं करते, भगवान का भजन नहीं करते, बड़े दुखी। यह प्रश्न सुन करके कि आप समस्त शास्त्रों का सार जो अपने गुरुजी से समझा है, पढ़ा है, अनुभव किया है, ऐसा बतलाइए कि आत्मा प्रसन्न हो सके। बड़े प्रसन्न हुए और उसके उत्तर में बोलते हैं, सवई पुंसांग परो धर्मो जतो भक्ति रधोक्खजे अहं दुःखाद्भवेता जात्मा संप्रसीदति। सवई मनुष्य मात्र का परम धर्म है। क्या परम धर्म है? इंद्रियों से अति, ज्ञान से अति, जो अधोक्षर पुरुष कृष्ण भगवान स्वयं है, उनकी निरंतर जीवाई भक्ति, बिना किसी हेतु की भक्ति, ये मनुष्य मात्र के लिए, प्राणी मात्र के लिए परम धर्म है। अभी हमारा धर्म हिंदू धर्म है, क्रिश्चियन धर्म है, इसके अतिरिक्त बौद्ध धर्म है, मुस्लिम धर्म है, बहुत तरह के धर्म है, ये सनातन नहीं है। आत्मा का धर्म नहीं है। हमारे गीता भागवत में आत्मा का धर्म बतलाया गया, मुस्लिम हिंदू ये सब का भी केवल नहीं बतलाया गया। तो प्राणी मात्र का यही धर्म है, बिना किसी कारण के जागतिक लाभ के लिए। जो परात्पर ब्रह्म, परम ब्रह्म श्री कृष्ण है, यह परम पुरुष है, अहंत की भक्ति की है। भक्ति किसे कहते हैं? इसी को परम धर्म या भक्ति कहते हैं। इंद्रियों से अतीत जो परब्रह्म है, विश्व का सृजन करने वालों का भी, ध्वंस करने वालों का भी, सृजन संहार करने वाले हैं, उनके चरणों में निरंतर जीवई दल धारावत अपिछिन्न गति से जो सेवा की उपासना होती है और सेवा की जाती है, वो भक्ति। इसी को चैतन्य महाप्रभु के परिकर श्रीलरूप गोस्वामी ने भी कहा है, यह ऐसा ही समस्त शास्त्रों का सार लेकर के बड़ी सुंदर विचित्र व्याख्या की, सहज भी है कठिन भी है, जो चाहते हैं उनके लिए खूब सहज है, और जो अनिच्छुक होते हैं उनके लिए बड़ा भारी कठिन है। वो कहते हैं अन्नाभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म आदि अनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्ति रूपतः। तात्पर्य क्या? सरल सहज शब्दों में यह है, कृष्ण की तन मन और वचन, और वचन से अतिरिक्त भावना से कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, कृष्ण के रुचि के अनुसार और कृष्ण की प्रीति के लिए ही, कृष्ण के सुख के लिए ही जो चेष्टाएं की जाती हैं, जो लौकिक किसी कामना के लिए नहीं होती, तथा कर्म ज्ञान योग तपस्या स्वाध्याय इत्यादि से आच्छादित नहीं करती। क्या तात्पर्य? तन मन और वचन ये तो सभी लोग समझते हैं, और इसके अतिरिक्त भावना, जो कुछ भावना करते हैं उनकी सारी चेष्टाएं अनुकूल और प्रतिकूल रूप में, जो भक्ति के अनुकूल है उसे करेंगे और भक्ति के अनुकूल नहीं है उसे नहीं करेंगे, ये ऐसी चेष्टा भी हो। अपराध इत्यादि न हो, भगवान की सेवा, ऐसी दोनों प्रकार की चेष्टाएं हों। और साथ साथ में तैल धारावत अविच्छिन्न गति से हो, आज किया कल नहीं किया ऐसा नहीं, सोते जागते उठते बैठते फिरते, और किसी वैष्णव गुरु जो संसार से विरक्त हो, संसारी कोई कामनाएं नहीं रखता और समस्त शास्त्रों को अनुभूत कर सका है, सारे संदेह को दूर कर सकता है, ऐसे गुरु वैष्णव के अनुगत रहकर चेष्टाएं करता है, ये हुई भक्ति। उत्तमा भक्ति नहीं हुई, उत्तमा कम होगी जब किसी भी संसारी लाभ पूजा प्रतिष्ठा या किसी चीज के लिए न हो। जैसे ध्रुव जी भगवान का भजन तो किया, 6 महीने में उनको दर्शन कर लिया, किंतु राज्य चाहा जगत, इसलिए वो उत्तमा भक्ति में नहीं आया, सकाम भक्ति में हुआ है। जैसे और एक प्रश्न हो सकता है, भगवान को खुश करना उनके रुचि के अनुसार और उनकी सेवा के लिए, उनकी उनके कल्याण के लिए हो तो भक्ति कहलाती है, किंतु जसोदा मैया ने उन्हें रस्सी से बांध दिया उस परम ब्रह्म को, और हाथों को भी बांध दिया, ओखल से बांध दिया, और वो कहने दिया मारू फिर चोरी करेगा, उस परब्रह्म को कहते हैं जो धर्म का मूल आदि है, और उसे डरा धमका रही और कृष्ण रो रहे हैं, भक्ति हुई कि नहीं हुई, कृष्ण प्रसन्न कहां हो तो रो रहे हैं। जसोदा मैया की भक्ति कुछ और बड़ी है, वो देखते हैं कि चोर चोटा न बन जाए भविष्य में, अभी मक्खन चोरी कर रहा है किसी के घर में और कुछ चोरी करेगा, बदमाश लड़का न बन जाए, पर ब्रह्म है रहा है अपने घर में, अभी हमारे पुत्र के रूप में आया है। नंद बाबा सोचते हैं पर ब्रह्म है तो ब्रह्म है, अभी तो हमारा बेटा हो करके, बेटा जरा मेरी जूती ले लो, और जूती लेकर के सिर पर चले, जरा पीढ़ी लाइए ले आना तो बैठने के लिए, उसको उठा नहीं पा रहे, गोवर्धन धारण कर लिया, सब कुछ कर लिया, और ये कुछ नहीं कर तरह तरह की लीलाएं। इसलिए कृष्ण के रोने पर भी भक्ति हो, क्यों, जो यशोदा जी का हित है वो कृष्ण का हित समझ, कल्याण कैसे होगा यह समझती है, और दूसरी तरफ चारों मुष्टिक से युद्ध हो रहा है, आज कृष्ण टाल ठोक करके उसे कुश्ती दंगल कर रहे हैं, मल्ल युद्ध, और कल बड़ी आनंद की बात है, बहुत दिनों के बाद में वीर रस आस्वादित हो, ये भक्ति नहीं है। कृष्ण का प्रसन्न होने पर भी भक्ति नहीं है, क्यों, प्रतिकूल उसमें चेष्टा है, अनुकूल ना अनुकूल नहीं है, वो कृष्ण को जान से मार डालने के लिए, कंस को प्रसन्न करने के लिए युद्ध कर रहा है, इसलिए भक्ति नहीं हो। और बात समझिए, भक्ति में है सेवा वृत्ति, तन से मन से वचन से भावना से सेवा हो। ध्रुव जी की भक्ति उत्तमा भक्ति नहीं है, सकाम है, इसलिए भक्ति की श्रेणी भी नहीं आई। ऐसे जगत की जो कामनाएं करके रखेंगे और भगवान का भजन भी करेंगे उनकी भक्ति में नहीं आई, सकाम मिश्रा हो जाए, कर्म मिश्रा भक्ति, और वो कर्म मिश्रा भक्ति भक्ति के अंतर्गत नहीं मिलती। दूसरी बात, सेवा की चेष्टा होनी चाहिए, प्रहलाद महाराज, भीष्म देव, सनक सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये सब लोग, और पहले चरित्र के, भक्त चरित्र के पहले सुखदेव गोस्वामी का चरित्र, ये ज्ञानी भक्त कहलाते हैं। ज्ञानी नहीं, ज्ञानी वो कहलाते हैं जो ब्रह्म में मिल जाते हैं, सो अहम पादी। कभी भी ये बुरी बात मत रखना जब मैं ब्रह्म में मिल करके ब्रह्म बन जाऊं, सो अहम तत्त्वमसि, तुम जो हो मैं भी वही, ऐसा मत मानो। शंकराचार्य ने कुछ परिस्थितियों में ब्रह्मवाद की स्थापना करने के लिए कुछ ऐसे बतलाए थे जो सामयिक थी उस समय के लिए, उसकी अब आवश्यकता नहीं। इसलिए हम लोग वही ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म के सेवक हैं, दासोस्मि दासोस्मि। प्रहलाद महाराज निशिंग जब प्रकट हुए तो उनकी क्या सेवा की, हाथ जोड़ करके स्तुति, खिलाया पिलाया, जो प्रभु आपको भूख लगी है, आपने युद्ध किया आप थक गए हैं, आपके पैर दबा दूं, न भोजन ले आ करके उनको निवेदन किया, क्या किया, उनके ब्रह्म को भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, वो सर्वव्यापी हैं, सबके प्रभु हैं, उनको कौन सेवा करेगा। तो ज्ञानी तो वो होता है जो स्वहंवादी, मैं ही वो ब्रह्म हूं। तुम ब्रह्म कैसे हो सकते, बिलबिला रहे हो दुखों से, भोग प्यास से छटपटा रहे हो, आतंकवादियों से दुखी हो। यदि ब्रह्म ही रहते तो सभी कुछ कर लेते। इसलिए ब्रह्म नहीं है, पर ब्रह्म नहीं, उनके अंश है, ईश्वर अंश जीव अभी। तो जो स्वहंवादी होते हैं वो ज्ञानी है, और ज्ञानी भक्त होते हैं भगवान को भगवान मानते हैं, उनको सर्वव्याप्ति मानते हैं, सर्वशक्तिमान मानते हैं, और उनको भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, विश्व ब्रह्मांड को एक गेंद की भांति कमल के फूल की तरह लेकर के दौड़ सकते हैं, गोवर्धन को लेकर के उठाना कोई बड़ी बात नहीं। ये सब शक्तियां जिसमें है वो परब्रह्म है। तो अपने ब्रह्म को, अपने इष्ट देव को ऐसा ही समझ। प्रहलाद महाराज के इष्ट देव निशिंग जी हैं, जो भगवान प्रकट हुए हिरण्यकश्यप को मारा, बहुत युद्ध हुआ, किंतु उनके प्रभु थके नहीं, उनको भूख प्यास भी नहीं लगी, इसलिए स्तुति करने लगे और कुछ नहीं। और भीष्म देव के इष्ट देव कौन है, कृष्ण है। वो समझते हैं कि कृष्ण पर ब्रह्म है, इनको बाण भी नहीं लगेंगे, अरे विष भी इनका कुछ नहीं करता है, विष के समुद्र में डूब जाए तभी कुछ नहीं होगा, और आग को खा लेते हैं तो उनको कौन क्या कर सकता है, इसलिए बाण से मारा, पर ये प्रभु को स्पर्श नहीं करेगा, लौकिक बाण, किंतु अर्जुन इत्यादि नहीं कर सकते, इसलिए इनको ज्ञानी भक्त कहते हैं। इन लोगों के प्रभु को कोई सेवा की आवश्यकता है न, सेवा करते हैं। और इसके बाद में अम्बरीश महाराज कृष्ण के भक्त थे, ब्रज में रहते थे, और अपनी सारी इंद्रियों के द्वारा, जैसा कि श्लोक की परिभाषा है, अपने तन मन वचन की सारी चेष्टाओं को वैष्णव के अनुगत्य में करते थे कृष्ण को प्रसन्न होने के। ये साधक थे किंतु शुद्ध भक्त कहलाते। इसके बाद में हनुमान जी हैं, इनसे श्रेष्ठ हैं, प्रेमी भक्त हैं, दिन रात प्रभु की सेवा में लगे रहते हैं। इनके प्रभु को भूख लगती है, इनकी पत्नी को कोई चुरा ले जाता है तो ये लंका दान भी कराते हैं, लड़ते हैं अपने प्रभु के लिए, जरूरत हो अपने प्रभु को कंधे पर ले लेंगे, सब सेवा करते हैं, एक काम नहीं कर सकते, अपना जूठा उनको नहीं खिला सकते। राम को लक्ष्मण को कंधे पर अपना बैठा लेंगे किंतु उनके कंधे पर बैठ नहीं सकते, इनसे भी प्रेम पर भक्त पांडव लोग श्रेष्ठ हैं, उनसे भी श्रेष्ठ उद्धव है, और उद्धव गोपियों की वंदना करते हैं, इसलिए गोपियां ही इस श्लोक की परिभाषा में सबसे श्रेष्ठ उत्तर और उसमें राधिका। अब उदाहरण को तो बतलाया, अब इसको विस्तृत संक्षेप में बतलाने के लिए आज हम लोग नौवें स्कंद तक की कुछ कथा का स्पर्श करेंगे, और कल से आप लोग, इस बार मैं देखता हूं कि श्रोताओं की संख्या बहुत कम है, पहले वर्ष आज दूसरे वर्ष आया भी तो यहाँ तो भरा हुआ, बाहर में भी खड़े रहते थे सैकड़ों लोग, न जाने क्यों ऐसा हुआ।
प्रोग्राम तो अन्य जगह
नहीं, यहाँ भी प्रोग्राम है आज तक का, तो ये कल से मैं ऐसा नहीं देखना चाहता, यदि होगा तो मैं लौट जाऊंगा, जब श्रोता ही नहीं आए श्रद्धा पूर्वक, और देखते हैं कि हमारी सब सभाओं में स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों की संख्या अधिक होती है, यहाँ तो आधी भी नहीं है पुरुषों की संख्या, और भी गड़बड़ी, इसलिए कल से हाँ जगह नहीं है इसलिए श्रोता लोग नहीं आ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, ये समझो कुछ करी, कुछ गड़बड़ी है, गड़बड़ी है। पहले तो बैन था, पहले की स्थिति और भयंकर थी, अभी भी लोग भरे पूरे आते, इसलिए दुख ही अच्छा है जिसमें भगवान का स्मरण रहता है, भगवान कथाओं को सुनने की इच्छा होती है। और वो सुख किस काम के यदि भागवत की कथा न सुने और सब न सुने। तो कल अपने परिवार वर्ग को लेकर के वहां पर पहुंचेंगे, जैसे हम लोग का भी उत्साह हो, जब वृंदावन से आए हैं जो ये सुनने के लिए उत्साहित हैं तो हम लोग भी अच्छी तरह से हरी कथा कहेंगे। बछड़े को देख करके गाय दूध देती है, ऐसे देखी थोड़े, बछड़ा कौन है, श्रोता है, श्रोते को देखेंगे जो ये भूखा है प्यासा है तो मैया को दूध देने की इच्छा होगी। बेटा यदि रोएगा तो मैया उसे दूध पिलाएगी, ऐसे पिलाती है, किंतु उस समय और ऐसे ही श्रोता नहीं रहने से फिर वक्ता का उत्साह नहीं रहता। इसलिए मैं चाहता हूं कि वहां पर वो डोंगरे ब्राह्मणों की के हॉल घर में काफी लोग आए और काफी लोग इसका लाभ उठाए।
परेड दो,
परेड दो। तो अभी हम लोग संक्षेप में प्रहलाद महाराज जी की कथा, ध्रुव जी की कथा और अम्बरीश महाराज जी की कथा संक्षेप में आज सुनाएंगे, और कल से दशम स्कंद से ब्रजवासियों के कृष्ण के प्रति कैसी प्रीति है, जो हम लोग भी आप लोग भी उनका जैसे कृष्ण के प्रति प्रीति करें। कृष्ण से कोई संबंध जोड़कर, यशोदा मैया नंद बाबा पुत्र का संबंध जोड़कर, ममता ममता के साथ में उनकी भक्ति करते हैं, ऐसे आप लोग भी कृष्ण से संबंध जोड़ेंगे। और ये संबंध कौन जोड़ेगा, कोई गुरु जोड़ेगा, एक्सपर्ट और व्यक्ति जोड़ेगा। और ममता हो करके और भगवान की सेवा कीजिए, लोक में परलोक में सुखी और शांति। अभी श्रीमान भक्ति वेदांत तीर्थ महाराज जी संक्षेप में प्रहलाद महाराज जी का उपाख्यान और उसके उपदेश संक्षेप में बताए। बैठ कर कहीं बोलो ऊपर पास।
उपदेश वाणी सुना था और वहीं से ही उनको स्वभाव और संस्कार किया और इन्हीं स्वभाव संस्कारों के कारण वे जन्म से ही भगवान का स्मरण करते रहे, उन्हीं के चिंतन में डूबे रहे, जो कि पुराणों की कथा है। संता गजानन पुलिसात्र निष्ठुरा श्री राजदयित नवलम ममैक। श्री प्रहलाद महाराज जी कह रहे हैं, बड़ी बड़ी विपत्तियां आई, हाथियों के दांत से पिसवाया गया, मारा गया और हाथी से पिसवा दिए गए, गले में पत्थर बांध करके पानी में समुद्र में डुबाने का प्रयास किया, सांपों के सामने छोड़ दी, बाघ के सामने छोड़ा, शेर के सामने छोड़ दी, यहाँ तक कि आग में डाल दिया गया, पहाड़ के ऊपर से गिराया गया। परंतु हर किसी विपत्तियों में जनार्दन मनुस्मरणानुभाव भगवान श्री हरि, जो जनार्दन सभी के दुख कष्ट को हरण करते हैं, ऐसे भगवान श्री हरि के स्मरण के प्रभाव से हमारा कुछ नहीं बिगड़ पाया और ना ही कुछ बिगड़ा है। इसलिए श्री प्रहलाद जी कहते हैं कि निरंतर भगवान का स्मरण करने से गोविंद बाहु परिरंभित, भगवान गोविंद ने अपनी भुजाओं के द्वारा उनको सुरक्षित कर लिया। आप देखिए, जबकि गुरु गृह में भी पड़ रहे थे उस समय कुछ दिन पढ़ते हुए
कथा करेंगे, उसके बाद ये कीर्तन आरती करते रहेंगे।
तुमने जो अच्छी बात की है तो हमें
आप पीछे 6:30 तक कर लेंगे, फिर आप भी लेट हो
जाएंगे।
ठीक है, और लोगों के लिए और सुख जाते
नहीं नहीं
को सुनाई
इस बार
बोले क्या,
यहाँ पर बहरा रहता था मिर्ची का, ये नहीं है
जी,
कुछ हालत बहुत कुछ
महाराज जी। एक्चुअली हमें 2 शिफ्टें लगाई है ना, 3 दिन यहाँ करेंगे, 4 दिन वहाँ पे करेंगे, उसके कारण लोगों का थोड़ा
घर वाले नहीं जा रहे,
उधर वाले तो नहीं जा रहे, हम तो यहीं पे करते हैं। अब ये
वहाँ करेंगे तो घर वाले नहीं
जाएंगे।
इसी प्रकार
आप बताइए, हम यहीं पे करते हैं, अगर आप कहें तो कर देते हैं।
आप लोग विचार करते
हैं,
हम लोग विचार करें,
आप लोग विचार करें,
ठीक है।
घोषणा जैसे करती है तो
वहीं पे करें, एक काम करते हैं ना महाराज,
इन लोगों को भी कह देंगे जो सब लोग आए।
ठीक है महाराज जी, एक काम करते हैं, हम एक काम करते हैं महाराज जी, कल वहाँ पे जाके देखते हैं कि क्या रिस्पॉन्स है।
हाँ
ठीक है,
अगर नहीं आएंगे तो
यहीं पे करेंगे। ठीक है महाराज,
ऊपर से बाद में एकदम खाने के लिए हाहा कर रहा है। ऐसे समय में बचने का कोई सवाल है? कोई भी सवाल नहीं, जो कि फिर भी सोच रहा है अब मरना तो है ही, तो मरते समय दो बूंद के शहद जो टपक रहा है, दो सब शहद पी करके ही मर जाऊंगा, भूल जाऊंगा संसार को। इसी तरह से हम सभी लोग संसार में जी रहे हैं, जो कि हम मनुष्य शरीर रूपी इस शाखा को डाल को झाड़ी को पकड़े हुए हैं और हमारी आयु को दिन और रात दोनों चूहिया के जैसे कुरेद रहे हैं, काट रहे हैं, हमारी आयु समाप्त होती जा रही है। और जिस घर संसार में हम सुख का प्रयास कर रहे हैं, वह सुख कैसा है? मक्खी की तरह चारों ओर से काट रहे हैं, जाला जंत्रणा में हम छटपटा रहे हैं, जो कि हमारे छोटी पकड़े हुए जंगराज कब पछाड़ पाएगा हमारे लिए कोई ठीक नहीं, जो कि मृत्यु ही मृत्यु चारों ओर से घिरा हुआ है। नीचे काल रूपी सर्प फन उठाए हुए हैं, हम चलते हैं रास्ते में, आगे पीछे आमने सामने हमेशा डर लगा हुआ है, कोई चक्कू न मार दे, कोई गोली न कर दे, कोई शूट न करे, इस तरह से हमेशा डर लगा हुआ है। यही भय जो है वही भय ही काल रूपी सर्प है। इसी प्रकार हम संसार में जी रहे हैं, सदा सर्वदा उद्विग्न है, अशांति में फंसे हुए। शांति नहीं, इसलिए यही परम उपाय है। प्रहलाद जी के इस बात को कहने से हिरण्यकश्यप तो बिगड़ गए, बोले क्या ऐसी बातें, विष्णु की बात करता है, जरूर कोई गुप्तचर आकर के इसकी बुद्धि को बिगाड़ता है। चारों ओर से सैनिक बाहर लग जाए, बड़ी कड़ाई से सावधानी से बालकों को पढ़ाया जाए। तो उस दिन से बड़ी चेतावनी, कठोर चेतावनी हो गई, बड़ी सावधानी से बड़ी कड़ाई से पढ़ाई चल रही है। इस प्रकार कुछ दिन फिर से पढ़ने के पश्चात जब वो बालक अपने पिताजी के पास में आए, उस समय हिरण्यकश्यप ने पहले की भांति फिर से वैसे ही पूछा, बेटा तुमने जो उत्तम विद्या सीखी है उनमें से कुछ हमें सुना दो। अब सुनाने की बात कही उत्तम विद्या, और नारद की बातें तो उनके मन में रोम रोम में रंगा हुआ है। तो प्रहलाद जी ने वैसे ही बात कही, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दासम सत्रमात्मनिवेदनम। जो कि श्रवण कीर्तन स्मरण अर्चन पूजन दास सत्र आत्मनिवेदन, ये नौ प्रकार की भक्ति, इस भक्ति को हम कैसे करें। प्रहलाद महाराज जी कहते हैं, जबकि भगवान के चरणों में जो भक्ति हो, कृष्ण के चरणों में, राम के चरणों में इस प्रकार भक्ति होगी, और अहित की भक्ति जो पहले अपने को समर्पण करते हुए सारी कामनाओं को अपनी सुख की लालसा को छोड़कर उन्हीं में समर्पित हो करके जब ऐसी भक्ति की जाए, वही उत्तम भक्ति है। इसी से आत्मा को शांति मिलती है, और संसार में विद्या की यही परावधि है, सर्वश्रेष्ठ विद्या कहलाती है। यह सुन करके हिरण्यकश्यप जो कि दैत्यों के राजा हैं और जिन्होंने 60,000 वर्ष तक तपस्या कर ली है, भगवान विष्णु से शत्रुता रखते हैं, जो कि संसार में अन्याय अत्याचार अपकर्म गायों की हत्या करना, दूसरों का कत्ल करना और अन्याय अत्याचार करना जिनका स्वभाव और आचरण है, वे भला क्या विष्णु को मान सकते हैं या इस बालक की बात को सुन लेंगे। कदापि सुनने को तैयार नहीं। आग में इस शरीर में ऐसी आग लगी मानो एकदम आग में जलने लगे। तो उस समय संडा वर्ग को बुलाया गया, तो संडा वर्ग को बड़े जोर से डांटे डांटे, तो उस समय उन्होंने हाथ जोड़ कर कहा कि महाराज हमने जब इस बालक को सिखाया तो हमें दंड देंगे, और यदि और किसी ने सिखाया तो मेरा कोई कसूर नहीं है। तो उस समय बालक से बोले, रे बालक तुम्हारी ये अवत्र बुद्धि कहाँ से आई, किसने तुम्हें सिखाया, सच बोल नहीं तो आज तुम्हें जान से भी खतरा हो जाएगा, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। उस समय बालक ने कहा, हे पिताजी ये लोग हमें कहाँ से सिखाएंगे, ये तो कभी जानते ही नहीं भगवान विष्णु को, अगर वे कहाँ से सिखाएंगे, हमारी बुद्धि अपने आप भगवान में लगी हुई है, हम बचपन से ही हम जन्म से ही हम भगवान का स्मरण करते आ रहे हैं, चुंबक जैसे लोहा को खींच लेता है, मेरी बुद्धि उसी तरह से खींची हुई है, मुझे किसी ने नहीं सिखाया, ये लोग कहाँ से सिखाएंगे। जिनकी बुद्धि विषयों में डमाडोल हो रही है, जो विषयों में फंसे हुए हैं, नते विदु स्वार्थ गति ही विष्णु, स्वार्थ की गति जो कि भगवान विष्णु जो अंतर्यामी परमात्मा के रूप में हृदय में विराजमान, उनको तो भूल गए और संसार को अपनाए और उन्हीं को गले लगाते हुए जिनका हृदय अतिशय मलिन हो रहा है, बुद्धि बिगड़ी हुई है, ऐसे सारा ही सारा अंधकार में पड़ा हुआ है, तो वो क्या जाने। एक तो संसार के जैसे एक खूंटे में दांव बना होता है और उसमें बहुत सारे बैल बंधे हुए घूमते रहते हैं, उसी तरह से एक घर बना करके उस संसार के चारों ओर घूम रहे हैं, तो उनको अंधा जथा अंधही रूपनी माना, एक अंधा व्यक्ति जैसे दूसरे अंधे का हाथ पकड़ करके घूमता फिरता है, उसी प्रकार इस संसार में जो गतानुगतिक है, यानी जो चलता आया है परंपरा के साथ, इसी प्रकार इसी परंपरा में कि घर संसार करना है, संसार धर्म करना है, यही सबसे बड़ा धर्म है। घर संसार धर्म ही सनातन धर्म है। इसी तरह से घर गृहस्थी करना और विषय सुख भोग करना और यही इसी तरह से जीवन की सांझ हो जाना और जीवन यात्रा को पूरी करके यहाँ से जाना। तो ऐसे ही अंधा जखम गई रूपनीय था। मोटी गांव में बंधे हुए एक अंधे की तरह एक गड्ढे में गिरे हुए उनको शांति कहा। बहुत से लोग सोचते हैं हमें भगवान का भजन करना चाहिए। पति पत्नी मिल करके घर में विचार विमर्श से करते हैं, कोई साधु संत आकर के उपदेश भी सुनाते हैं, हजारों प्रवचन हम सुना करते हैं, फिर भी हमारा मन भगवान में नहीं लग पाता है। बोले क्यों? सबसे पहले गृह प्रधान, हमने घर के खूंटा गाड़ ली है और उसी के हम चारों ओर घुमा करते हैं, इसलिए हमारे पास भगवान का व्रत तो है नहीं। जो कुछ है हे भगवान तुम दया करो हमारे घर संसार और सुखमय शांतिमय बन जाए और भक्ता भूलता रखे। तो घर को बनाने के लिए हम प्रभु का भजन करते हैं, न कि प्रभु के प्रति के लिए हम उनकी सेवा करते हैं, उनका भजन करते हैं। तो गृह प्रति फिर इंद्रिया जो है विषयों में डामाडोल हो रही है, इसलिए विषयों में दौड़ रही है। दूसरी बात है हमारा मन हमेशा जड़ होने के कारण गलत चीजों में हमेशा फंसा हुआ है, गलत बात को ही स्मरण करता है, कभी कोई अच्छी बात तो मन में आया ही नहीं। दूसरी बात हम चबाए हुए चीजों को भोग रहे हैं, जो पहले पहले हम रोज दिन वही रोटी पानी खाना पीना और घर संसार में चेंगे मैंने दुनिया भर में खुशी में ही हम लगे हुए हैं, इससे आगे हमारे कुछ हो नहीं पाता। इसलिए कहते हैं प्रहलाद महाराज जी, हे पिताजी नहीं शाम स्थावर प्रमाण भी ये संसार का माया जाल छूटता नहीं और भगवान के चरणों में चित्त नहीं लगता है। कब तक? जब तक कि मही असाम पाद रजो भिषेकम्। एक महान पुरुष गुरु के चरणों में जब तक उनके चरण धूल में अपने को नोछावर नहीं करते, अपने को अभिषेक कर नहीं डालते, तब तक हमारी बुद्धि भगवान में कदापि नहीं लग सकती है, चाहे हम हजार माथा मार ले। इस तरह से प्रहलाद महाराज जी कहते हैं कि ऐसे पल ही कभी भगवान में नहीं लग सकता है। इसी प्रकार उन्होंने जो कि बालकों को भी शिक्षा दी, प्रहलाद महाराज ने कहा कि हे प्यारे भाइयों, बहुमार आचरित प्राप्य धर्म भागवतान की है, दुर्लभ हम मानुषों में जन्म तदप्य ध्रुवम अर्थ, जो कि कौमार काल से बचपन से ही हमें भगवान का भजन करना चाहिए। जैसे एक बार कि माता पिता ही हमारे कारण बन जाते हैं और विशेषकर माताएं जो हैं ये संसार के धरोहर हैं, संसार की सारी जिम्मेदारी उन्हीं पर होती है। जैसे उनका स्वभाव संस्कार जैसे विचार बुद्धि होती है वैसे बालक को भी विचार बुद्धि बन जाता है, जैसे संस्कार बनता है। माता के कोख से ही बालक संस्कार लेकर के आते हैं, जैसे कि अभिमन्यु के जीवन में देखा जाए, परीक्षित महाराज के जीवन में, तो प्रहलाद जी के जीवन में, सभी के जीवन में वही संस्कार देखा जाता है। जैसे जैसे माताओं के कोख से लेकर के आया वैसे संस्कार को प्राप्त होता है। इसलिए हम सभी को चाहिए भगवान का भजन करना कि हमारे संस्कार से बच्चों को संस्कार मिले और उसी रूप में बचपन से ही भगवान का भजन करते जाए, क्योंकि बचपन में भजन करते हुए बुद्धि कोमल स्निग्ध सरल है और उस मन पर बुद्धि पर जो छाप पड़ जाता है वो जाने नहीं जाकर के जबकि संसार का सारा चित्र भरा हुआ है तो मन में ऋण के रूप में वही सब दिखने लगता है तो भगवान का स्मरण होता नहीं है। इसलिए बचपन से ही भागवत धर्म सनातन धर्म पूरे है भगवान श्री राधा माधव की उपासना एक निष्ठा एक भाव से युक्त होकर उनकी सेवा करें अपने मन प्राण लगाए संपूर्ण रूप से उन्हीं के चरणों में समर्पण करें यही सर्वश्रेष्ठ धर्म है। उन्हीं के लिए प्रयास करना चाहिए जीवन में और किसी के लिए प्रयास करना तो व्यर्थ ही है क्योंकि जैसे दुख आता है वैसे सुख भी आता है। धन दौलत खाना पीना जीवन में सुख दुख सभी को जाता और जाता है उसके लिए हाय हाय न करके प्रभु के लिए प्रयास करना चाहिए। बोले कि संसार के लिए कितना प्रयास करना पड़ता है एक एक पैसा कमाने के लिए सिर का पसीना पैर में गिराना पड़ता है सारा शरीर काला करना पड़ता है खून पसीना एक करना पड़ता है तब पैसा आता है। भगवान को प्रसन्न करने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है केवल खुदाई की भावना से ये प्रभु मैं तुम्हारा हूँ तुम मेरे हो इस प्रकार मैं तुम्हारा हूँ इतनी बात कोई कह दे कृष्ण तुम्हार हम यदि बोले एक बार माया बंद भई थे कृष्ण तारे करे पार हे कृष्ण मैं तुम्हारा हूँ एक बार यदि कोई कह दे माया के बंधन से तत्क्षणा वो व्यक्ति पार हो जाता है यह ध्रुव निश्चित है। इसलिए भगवान को कोई अपना लेता है मोर सखा मोर पुत्र मोर प्राणपति कृष्ण मेरे सखा है मेरे पुत्र है मेरे बाल गोपाल है मेरे प्राण प्रियतम है मेरे भुवन सुंदर है हमें और कुछ नहीं चाहिए उनकी सेवा करनी है उन्हीं में हमारा अनुराग हो इस प्रकार की भावना यदि किसी में आ जाए और इसी भावना के साथ में अपने को समर्पण कर दे तो उसी से ही उनको परम लाभ हो जाता है यही एकांत भक्ति गोविंद में है। इसलिए कहा तथा नते माधव तावता गति देवताओं ने भगवान से स्तुति प्रार्थना करते हुए कहा हे माधव जो व्यक्ति त्वयि बद्ध स्वभिता इस प्रहित भाव से बद्ध भाव से तुम्हारे बीच में जिन्होंने प्रीति जोड़ ली है अनंत ममता के साथ अभी अभी आपने गुरु जी से सुना था भक्ति की भक्ति का पहचान क्या है अनंत ममता कृष्ण मेरे हैं इस प्रकार के स्प्रहित भाव से बधे हुए हैं इस प्रकार स्प्रहित भाव से बधे हुए व्यक्ति को चाहे हजारों विपत्ति आ जाए और कितने ही देवता लोग चाहे कोई भी व्यक्ति उनको परेशान करना चाहे और कितना ही विपत्ति डालना चाहे दया भी गुप्त विचरंत निर्भया तुम्हारे द्वारा सुरक्षित होने के कारण वे निडर निर्भय हैं उन्हें कोई भय नहीं होता न कभी घबराता न कहीं पर किसी तरह से किसी बात में छूटता क्यों दया भी गुप्त विचरंत निर्भया वे निर्भय होकर घूमते फिरते हैं पिनाय कामी कपमूर्ध सुख प्रभो सारे बाधाओं के सिर पर पैर धर करके वे सर्वत्र घूमते रहते हैं। इसलिए प्रहलाद महाराज जी का कहना है भगवान को प्रसन्न करने के लिए और कोई बात नहीं उनको अपना ले जैसे हमने घर संसार को अपनाया आत्मीय सजन को अपनाया पुत्र परिवार को अपनाया अपना सदस्य बनाया अपने घर के मेंबर बना लिया और उनके लिए जीवन की सारी एनर्जी और सारा जीवन मन प्राण हम ढाल देते हैं परंतु उनसे हमें क्या मिलता है दुख ही दुख मिलता है कदापि शोक नहीं और उनके पीछे हम मोह जाल में फंसे हुए उस मोह को हम छोड़ नहीं पाते तो प्रहलाद महाराज जी कहते हैं कि हमें इस सब को छोड़कर भगवान के चरणों में ऐकांतिक भावना हो उनके चरणों में प्रीति हो अनुराग हो उस यही हमारे जीवन का परम धर्म है। इन्हीं कथा के साथ में पंचाग्रस्त कृपा सिंधु है।
आप लोगों ने संक्षेप में प्रहलाद महाराज जी का चरित्र सुना। उसके पिताजी ने उसको जान से मारने के लिए इतनी चेष्टाएं की, किंतु प्रहलाद महाराज जी ने भक्ति नहीं छोड़ी। जिस प्रकार से वो कहते हैं कि जिस प्रकार से एक अंधा व्यक्ति एक अंधे व्यक्ति को मार्ग प्रदर्शन करता है तो दोनों वो गड्ढे में गिर करके मरते हैं, उसी प्रकार से संसारिक विषय लोग एक उपदेश देते हैं जो खुद ही भक्ति पालन नहीं करते वो अंधे हैं, और जो श्रोता है वो अंधे है, दोनों ही वो डूब मरते हैं। इसलिए तत्वविद ऋषि कृष्ण भक्त संसार से विरक्त ऐसा व्यक्ति हो, संसार बुरा नहीं है यदि भगवान का भजन करने का उद्देश्य हो तो। ये संसार ही पांडव लोग भक्त थे, गोपियां गृहस्थ थे, महाप्रभु के जितने परिकर हैं वे सभी गृहस्थ भक्त हैं। ये गृहस्थ धर्म इसीलिए बनाया गया कि दोनों मिलकर के भगवान का भजन करें। प्रहलाद महाराज जी कहते हैं 100 वर्ष की आयु में आधा सोने में चला गया, 50 वर्ष तो ऐसे सोने में चला गया, और जो शराब इत्यादि पीते हैं, मांस मछली खाते हैं, अजितेंद्रिय व्यक्ति, उनकी तो कोई गिनती ही नहीं। एक वर्ष से लेकर जन्म से लेकर 20 वर्ष तक शिक्षा में लग जाता है, किसी विषय में एक्सपर्ट होते हैं, और 80 वर्ष से 100 वर्ष तक की आयु में कमर भी सीधी नहीं होती, उसमें में भजन नहीं होगा, खांसते खांसते दम निकलता है, बूढ़े हो जाते हैं, कमर भी सीधी नहीं हो पाती है, उसमें क्या भजन करेंगे। तो 20-20-40 वर्ष ये निकल गया और 50 उधर, 90 वर्ष चला गया, अब रह गया 10 वर्ष। 10 वर्ष में विवाह शादी करने हैं, लड़कों को शिक्षित करना है, गाड़ी करना है, आजकल कितने तरह के अरमान और इच्छाएं हैं, भगवान का भजन कब होगा, इसलिए नहीं होने का। इसलिए बचपन से ही जैसे बांस हरा रहने पर वो जैसे उसको नवाओ वो नव जाता है, और पक जाने के बाद सूख जाने के बाद नव तो टूट जाता है, तो बुद्धि सठिया जाने के बाद में 60 वर्ष की उम्र के बाद में बुद्धि बिगड़ती है, वो जैसा है एक लग जाती है, वो जल्दी नहीं सुधरती, भगवान का भजन में नहीं आती। इसलिए बचपन से ही भगवान का भजन, गुरु शुश्रूषा, गुरु की सेवा करो, उनके वचनों को सुनो, वैसा ही बनाओ, और उनके अनुगत्य में भगवान की सेवा करो, बस जीवन सफल हो जाए। ये प्रहलाद महाराज जी का चरित्र है। नृसिंहदेव ने प्रकट होकर के प्रहलाद महाराज की रक्षा के लिए हिरण्यकश्यपु को मारने के बाद में बड़े क्रोधित हो गए, उनके जटाजाल से आग निकल रही थी, मानो विश्व ब्रह्मांड को वो समाप्त कर जला कर भस्म कर देंगे। उसमें प्रहलाद महाराज झट बिना भय के विचरण के निर्भया उनकी गोदी में आ गए, और नृसिंहदेव के आंसू आ गए, बोले जैसे तुम्हारी रक्षा करने में हमारी देरी हो गई, विलंब हो गया, तुम वर मांगो। मैंने वर पाए में बनिया तो हूं नहीं जो आपसे वर मांगू, आपकी भक्ति के लिए की है, उसके बदले में संसारी कोई भी नहीं, ओ आप समझते हैं कि यदि कुछ मांगने की इच्छा है तो वो मेरी नष्ट हो, मैंने फिर भी मांगो, उन्हें पिताजी की सदगति हो जाए, तो वो भी हो गया है और मांगो। कहे जगत भर का जो लोग भगवान से विमुख हैं और संसार में दुख पा रहे हैं, उनका दुख हम भोगे और मेरा ये सुकृति उनको मिल जाए, वो सब लोग मुक्त हो जाए, ऐसा कौन हो सकता है। ऐसे प्रहलाद महाराज जी, उनका चरित्र बहुत शुद्ध है, भगवान का भजन करने के लिए उनके चरित्र को का अनुगमन करना होगा, हमें वैसा ही बनना होगा तो भजन कर सकेंगे। अब उनसे भी कुछ आगे बढ़े हुए साधक भक्त हैं अम्बरीश महाराज, उनका भी संक्षेप में हमारे रसानंद ब्रह्मचारी जी आप लोगों को सुनाएं। भाषा सरस होनी चाहिए, कठिन नहीं होनी चाहिए, जो लोग ना समझ सके, बातें स्पष्ट होनी चाहिए।
ज्ञानांजन तलकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः।
एक बार जरा कीर्तन करा दो, कीर्तन करा दो।
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे कृष्ण नाम तो भजले
नहीं वैष्णव वैष्णव मंत्र चरणों में यथाजुग प्रणाम करता हूँ। श्रीलोक महाराज जी मुझ आदेश दिए हैं अम्बरीश महाराज का जो तिब्बत चरित्र को प्रति कुछ बताने के लिए। अभी हम लोग ने श्रवण किया ध्रुव महाराज का चरित्र है। ध्रुव महाराज का जो चरित्र जो भक्ति है उसमें कुछ कामना वासनाएं थी, इसलिए वह भक्ति को शुद्ध भक्ति नहीं माना गया। लेकिन उनसे जो बड़े भक्त ये भक्त प्रहलाद महाराज, आप लोग ने श्रवण किया है भक्त प्रहलाद महाराज का जीवन में जितने बाधाएं आने पर भी वे कैसे अपना भगवत भक्ति को नहीं छोड़े और उन्हीं के लिए साक्षात भगवान को नरसिंह रूप में भगवान को प्रकट होना पड़ा। और भगवान जब वर्ग ना चाहते थे प्रभु केवल आपका जन्म की हमें भक्ति ही चाहिए, हम बढ़िया नहीं है, इसलिए आपको भजन नहीं किया कुछ पाने के लिए। अगर मुझे देना चाहते हो सारा दुनिया का जो पाप खोजा मेरे सिर पर दे दो और सारे दुनिया लोगों को अपना धाम में ले जा, देखो उनको भावना कितनी बड़ी है। लेकिन इनको जो भक्ति यहाँ पर दर्शन देव प्रकट हुए हैं लेकिन उन्होंने प्रभु की कोई सेवा नहीं की है, क्योंकि उनको पता है मेरे जो प्रभु ने सर्वंतर्यामी भगवासी सारा दुनिया का मालिक, इसलिए भगवान का व्रत उनको ऐश्वर्य भावना है। उनसे जो बड़े भक्त ये अम्बरीश महाराज है, ये अम्बरीश महाराज कोई साधारण ऐसे तैसे व्यक्ति नहीं थे, संपूर्ण सप्त पृथ्वी का उन्होंने एक अच्छा राजाधिकार उनको प्राप्त था। लेकिन इतने बड़े राजा होते हुए भी अपना जीवन में कैसे भगवत भजन करते थे, उन्होंने स्वयं भगवत भक्ति करने के लिए मथुरा में आए और सिर्फ ब्रज में वास करते थे और उन्होंने कैसे भक्ति किया, हमारा घर में कुछ पैसा हो जाएगा ना अगर हम एक मंदिर में स्थापन कर देंगे, नहीं तो घर में कोई शुक्र होगा एक पुजारी रख लेंगे और पुजारी आगे एक घंटा जाएगा और किसी तरह से उसका बाता सा और कुछ भोग लगा देगा और हम ठाकुर का सेवा नहीं करेंगे, इतना पैसा हो जाए तो। लेकिन ये अम्बरीश महाराज संपूर्ण पृथ्वी का एक अक्षत्र राज्य को प्राप्त करने पर भी उन्होंने संपूर्ण एकादश इंद्रियों को द्वारा पूरे भगवत भजन करते थे। कहते कैसे, कहते सबई मन कृष्ण पदारविंदयो पचासी वही को सबई मन कृष्ण पदारविंदयो, ये मन को 24 घंटा में 24 घंटा प्रभु की भजन में ही तल्लीन रखते थे, उसमें डुबा करके रखते थे और 85 जब कुछ बोलते थे ऐसे नहीं मुंह में जो आया बोल दिया, कहते 85 वैकुंठ गुणान वर्णने भगवान का गुणकीर्तन प्रभु की दिव्य चरित्र को छोड़ करके मुंह में कुछ भी नहीं बोलते थे। कहते क्यों, ये जीवा का कभी सार्थ करता है जब ये जीवा में हम हरि कीर्तन करें, इसलिए भागवत में सुतो गोस्वामी कहते हैं अगर ये जीवा को द्वारा अगर हम प्रभु की कीर्तन नहीं करके दुनियादारी की चुगली करे इधर उधर का बात बोले कभी जीवा कैसे है। तब तारकुरिक ए वसुतो न सो उपदाय श्री गुरु गायेगा था, भगवान का गुणगान नहीं करने पर कभी ये जीवा जीवा नहीं, ये जीवा एक मेढक की जीवा है, जैसे बारिश का समय में मेढक टटर टटर करता है और सांप का आहार होता है मेढक। अभी सांप देखता है मेरे को तो आहार देने का जरूरत नहीं क्योंकि ये तो अपने आप ये मेढक टटर टटर कर रहा है तो मेरे को बुला रहा है, फिर तो आवाज को अनुसरण करते करते वो धीरे धीरे सांप आकर उसको निगल लेता है। कहते उसी तरह अगर ये जीवा को द्वारा हम कृष्ण कीर्तन नहीं करें प्रभु की भजन नहीं करें तो कभी ये जीवा जीवा नहीं, ये एक मेढक की जीवा के बराबर है, हमारा सिर को भर में ये काल बढ़ा रहा है, उपयुक्त समय आने पर हमको ग्रास कर लेगा। कहते करो कर करो हरि नंदिर मार्जना दिशु, इतने बड़े राजा लेकिन घर कोई नौकर नहीं रखे, ठाकुर को मंदिर मार्जन ठाकुर का बर्तन मार्जन ठाकुर जी को श्रृंगार ठाकुर के लिए फूल चयन करना उनके लिए चंदन घिसना उनको श्रृंगार करना, इतने बड़े पृथ्वी का राजा होते हुए भी वो अपना हाथों से करते हैं नौकरों से नहीं, क्योंकि हाथ का सार्थकता कब है, जब
कंकड़ों से अपना हाथ को भर कर रखें, लेकिन इन्हीं हाथों से हम ठाकुर की सेवा नहीं करते हैं। कहते हाथ क्या है, कहते सब करो, ये दोनों हाथ हाथ नहीं, ये सब मतलब मृत हाथ है, ये तुम्हारा मरा हुआ हाथ है, ये हाथ किस काम का? अगर ठाकुर की सेवा नहीं करोगे तो, इसलिए हमारे पिताकर कहते हैं जब हम पितृ पुरुषों का पिंड प्रदान करते हैं, पितृ पुरुष पिंड ग्रहण नहीं करते, क्योंकि कहते सब करो, तुम्हारा हाथ हाथ नहीं, ये मरा हुआ हाथ है।
कल को उधर बड़ी कखन जावे
और उन्होंने ये जिह्वा को द्वारा कीर्तन
स्नान करे जावेन किसे स्नान करे
और चरण को
स्नान करे जावेन किसे स्नान करे
स्नान करे
10:30 सो गेला है बस आगे चले
परिक्रमा करते थे। अगर इन प्यार से प्रभु की मंदिर परिक्रमा नहीं करेंगे तो ये प्यार क्या है? कहते ध्रुव जन्म भाजो, कहते भिक्ख जैसे एक जगह में खड़ा रहता है वैसे ही ये प्यार भी तुम्हारा भिक्ख जन्म है। इसलिए दूसरे जीवन में प्रभु और इंसान का जीवन नहीं देंगे। कितना भाग्य से तुमको एक इंसान का जीवन दिया, तुमने भगवान का मंदिर की परिक्रमा नहीं की, तुलसी परिक्रमा नहीं लगाया, जाओ पेड़ बन ले जाओ। कभी इन आंखों से उन्होंने प्रभु जी को लिंगानी दर्शन दृश्य कहते प्रभु जी का स्त्री की दर्शन करते थे, तिथि वीडियो इधर उधर चीज नहीं देखते थे, उल्टा सीधा चीज नहीं देखते थे, कहते प्रभु की केवल मूर्ति ही प्रभु का स्वरूप को दर्शन करते थे। कहते अगर इन आंखों से हम प्रभु का दर्शन नहीं करें तो कहते आंख क्या है? कहते बरामी ते ते नहीं, कहते तुम्हारा आंख नहीं ये पांख है, कहते तुम्हारे पूछ में भी सुंदर आंख में भी बना हुआ है, मरे का पूछ से पूछ में, कहते तो तुम्हारा आंख से बड़े सुंदर आंख पूछ में। अगर इन्हीं आंखों को द्वारा अगर हम प्रभु जी का श्री विक्रम को दर्शन करें तो इन आंखों का साथ बताए। इसलिए अमरेश महाराज ऐसे ही एकादश इंद्रियों को द्वारा संपूर्ण रूप में भगवत सेवा में नियुक्त थे और संपूर्ण प्रभु के चरण में शरणापन्न थे। हमारे दूसरे पुराण की कथा थी अमरेश महाराज का, लेकिन अमरेश महाराज का बहुत सारी पारायणियां थी। अमरेश महाराज इतने ठाकुर को सेवा में 24 घंटा ऐसे ठाकुर को सेवा में तल्लीन थे, उनको फुर्सत नहीं था उनको रानियों को साथ में मिलने का, उनको बहुत सारी रानियां थी। अभी उनकी जो सबसे जो छोटी रानी थी, सोचिए क्या बात है, शादी करके घर में लाए, दिन में एक बार तो कम से कम हमसे मिला गए, लेकिन दिन में एक बार भी हमसे मिलने के लिए आते। अभी देखते थे सबसे जो छोटी रानी वो देखने के लिए आई, महाराज ने कहते किया देखा ये महाराज जी ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं और स्नान करके तिलक लगा करके ठाकुर का अपने हाथों से ठाकुर की आरती उतारते हैं, ठाकुर का मंदिर मार्जन करते हैं, ठाकुर जी के लिए पुष्प चयन करते हैं, ठाकुर के लिए चंदन घिसते हैं, अपना हाथ से ठाकुर जी की बर्तन बनते हैं, 36 घंटा ठाकुर का नाम जप करते हैं। ओ छोटी आपने सोची, इसलिए महाराज को फुर्सत नहीं होता है दिन में एक बार महारानी से मिले, कल से मैं थोड़ी सी महारानी को इस सेवा में मदद कर दूंगी, फिर तो महाराज को फुर्सत मिलेगा। अभी छोटी रानी देखने से पहले देख ली, इसलिए महाराज जो जो सेवा करते थे वो छोटी रानी ने वो सेवा को राजा को पहले से हाँ करके सब कुछ समाप्त करके और सब कुछ ठीक करके रख दी। महाराज उठ करके स्नान ध्यान करके तिलक लगा करके आए, देखा सारे ठाकुर का सेवा अलग प्रस्तुत है, सब कुछ तैयार ही है। महाराज ने देखा इस सेवा को किसने की, हम लोग उन पर खुश हो जाए अच्छा हुआ, हम तो करना नहीं पड़ा, लेकिन प्रभु के चरण में जिनको अनुराग है, प्रभु के चरण में जिनकी लगाम है, वो ठाकुर का सेवा भजन वगैरह कर नहीं सकते। महाराज ने यह सेवा किसने की उन्हें पता लगाया तो ये छोटी रानी ने ही सेवा की है। महाराज बुलाए, कहते तुमने ये सेवा क्यों की? छोटी रानी ने देख बोली महाराज मैंने देखा आप दिन भर सेवा करते करते थक जाते हैं, दिन में एक बार भी फुर्सत नहीं होता हमसे मिलने के लिए, इसलिए आपको मैं मदद करती। महाराज ने कहा नहीं, मेरे सेवा को नहीं छीनने का, अगर तुम्हारी सेवा करने का इच्छा है तुम्हारे घर में एक ठाकुर का स्थापन कर देता हूँ, तुम वो ठाकुर को सेवा करो, मेरा सेवा छीनने का जरूरत नहीं। महाराज ने छोटे रानी को घर में एक ठाकुर स्थापन कर दिया। अभी छोटी रानी बड़ी सुंदर ठाकुर की श्रृंगार करती है, बड़ा अलबेला सा श्रृंगार करती है। महाराज अभी किसी रानी को घर में नहीं जाते, अभी छोटी रानी को घर में आते हैं, इसलिए ये छोटी रानी ठाकुर को कैसे सेवा करती है। अभी और भी हमको महारानिया दूसरे तीसरे महाराज ने देखी महाराज तो हमारे घर में नहीं आते हैं, अभी एक छोटी रानी को मिल जाते हैं, उन्होंने उनको पीछे सियाही लगा दी, देखो तो क्या बात है, एक छोटी रानी घर में महाराज नहीं जाते हैं। तब उन्होंने आकर के देखा महाराज रानी से मिलने नहीं आते, महाराज आते हैं, ये छोटी रानी कैसे ठाकुर से श्रृंगार करती, सेवा पूजा कैसे करती। जब सारे पांच रानियों को पता चला, सारे पांच रानियां महाराज को पास में आई, आकर बोले महाराज हमारा घर में भी आप एक एक ठाकुर का स्थापन कर दीजिए, इसलिए हम भी ठाकुर का सेवा पूजा करना चाहते हैं। इसलिए महाराज अभी सारे पांच रानियों को घर में एक एक ठाकुर का पूजा स्थापन कर दिया, अभी राजा रानियां अभी सुंदर सुंदर ठाकुर को स्वीकार करते हैं, और महाराज दिन में एक बार आकर के ठाकुर को सेवा दर्शन करते थे। देखो ये महाराज कितने सेवा में तल्लीन थे, दिन में पांच रानियों के साथ में मिल लेना इनको फुर्सत नहीं होता, ऐसे सेवा करते थे। और ये क्या करते थे, कभी ये एकादशी व्रत रखते थे, इसलिए हमारे भागवत में कोई बाल व्रत का नाम नहीं है, सात शनि मंगल बुध बृहस्पति कोई बाल व्रत भागवत में कोई व्रत का नाम नहीं, केवल एकादशी करने का विधान दिया है। इसलिए अगर एकादशी व्रत को अगर कोई करे तो फिर उनको कोई बाल व्रत करने का जरूरत नहीं है, केवल एकादशी व्रत को द्वारा, क्योंकि एकादशी का जो स्वरूप है भक्ति स्वरूप ही, उसको द्वारा वो माधवती भी है, उसको द्वारा स्वयं भगवान संतुष्ट होते हैं, ये भगवान का व्रत है। अब तस्मिन तुष्टे जगत तुष्ट, अगर प्रभु की संतुष्ट कर दिया फिर दुनिया में किसी जगह देव को संतुष्ट करने का कोई जरूरत नहीं है। इसलिए भागवत में केवल एकादशी की बात आती, अम्बरीश महाराज अभी एकादशी व्रत करते हैं और संपूर्ण निर्जला निरोप एकादशी अभी, इसलिए कल भी एकादशी व्रत है, इसलिए आप लोग जरूर एकादशी व्रत जरूर रखिएगा। कल हमारे गत महाराज लोग आपको एकादशी को कथा सुनाएंगे, एकादशी करने का क्या विशेष महत्व है। देखो ये अम्बरीश महाराज एकादशी व्रत रखते हैं, जिस दूसरे दिन द्वादशी को संपूर्ण निरंभ निर्जला एकादशी करते थे, अभी दूसरे दिन
संक्षेप में बोलो, नहीं तो समय हो गया है, इसलिए आदमी एक एक करके उठ रहे हैं।
इसलिए एकादशी व्रत रखा, आप लोग कथा सुने होंगे, समय नहीं है, लेकिन एकादशी व्रत की इतना शक्ति है, कैसे दुर्वासा ऋषि को मारने के लिए प्रयास किया, लेकिन एकादशी व्रत रखने का नाते दुर्वासा ऋषि स्वयं शंकर जी का अवतार है, लेकिन एकादशी व्रत का इतना महत्व है, इतने शक्ति एकादशी व्रत का, स्वयं शंकर जी का जो अवतार दुर्वासा ऋषि भी उनके सामने फेल हो गया और साक्षात सुदर्शन चक्र प्रकट होकर के अम्बरीश महाराज को रक्षा किया, और ये दुर्वासा को पीछे से मारने के लिए उसको पीछे दौड़े, और दुर्वासा पहले ब्रह्मा जी को पास में गए, शंकर जी को पास में गए, कहीं उनको ठा नहीं मिला, लास्ट में स्वयं वैकुंठ में गए, वहां भी रक्षा नहीं हुआ, और लास्ट में आकर के अम्बरीश महाराज के चरण में उनको सना पड़ना होना पड़ा। ये एकादश व्रत की इतना महत्व है एकादश व्रत, ऐसे ही ये अम्बरीश महाराज भगवान का सेवा एकादशी इंद्रियों को करा, ये एकादशी व्रत करते थे और एकादशी इंद्रियों को करा हुए प्रभु पर इस रूप में सेवा किए, इसलिए हम लोगों को भी इंद्रिय का तभी सार्थकता है जब ये इंद्रियों को हम किसी के सेवा में लगाएंगे, प्रभु की सेवा में लगाएंगे। बोलो श्री अम्बरीश महाराज की जय, जय श्री राम। वृंदावन बिहारी लाल जी, इसे वाले नहीं बोल रहे, जरा सारे हाथ खड़ा होकर बोलो वृंदावन बिहारी लाल जी, जय जय श्री राम, जय जय महाराज की जय। अभी आप लोग हमारे वृंदावन से आए श्री गुरुदेव महाराज जी और सब जितने भी यहाँ पर संत लोग आए हैं,
आप लोगों से पिछले दो दिन से हरी कथा सुन रहे थे, आज तीसरा दिन था। कल से जो हमारा प्रोग्राम है, आगामी जो हमारे प्रोग्राम है कल से, वो परेड में है, डोगरा प्रतिनिधि सभा में है। कल स्वयं 3 बजे से वहाँ 6 बजे तक शुरू होगा, 3 बजे से 6 बजे तक ये कार्यक्रम चलेगा कल वहाँ डोगरा प्रतिनिधि से ब्राह्मण सभा में। आप लोगों से मेरी यही प्रार्थना है कि आप सब लोग वहाँ पर आए और अपने जीवन को सफल कीजिए। कैसे ऐसे जितने भी वृंदावन से जो लोग संत आए हैं उनकी हरि कथा से और हरि कीर्तन से, ऐसा कीर्तन जो देव दुर्लभ है। क्यों देव दुर्लभ है, ऐसे हमारे बहुत शास्त्रों ने इसकी व्याख्या की है, पर मैं एक थोड़ा सा पॉइंट इसलिए लगा देता हूँ। हम लोग कीर्तन कथा बहुत सारे महात्माओं से सुनते हैं, ऐसे महात्मा जिनका व्यवसाय ही होता है, मगर हमारे जितने आप लोग संत सुनते हैं, हमारे गुरु जी इतने आयु होकर भी पूरे विश्व में इस ब्रज की कथाओं का पूरे विश्व में बांट रहे हैं। और जैसे ये सब लोग हैं, पूरे कोई इनके कोई व्यवसाय नहीं है, सब लोग भगवान के लिए समर्पित हैं और उनके लिए हरि कथा सब जीवन के कल्याण के लिए करते हैं। ऐसे शुद्ध भक्तों से यदि हम कीर्तन कथा सुनते हैं तो हमारे क्या होता है, इसलिए श्रद्धा भक्ति और डरती इस तरह से धीरे धीरे हमारे मन में उत्पन्न होती है। इसलिए मेरी प्रार्थना से आप लोगों से है कि आप ये जो शुद्ध कथा है, शुद्ध संतों द्वारा की गई है कथा, ये हमारे अंदर कैसे ये चीजें आविर्भूत करती है। और जो हम कथा अवैष्णव से सुनते हैं, पद्म पुराण में बताया गया है अवैष्णव उपोज गिरम भूतम हरि कथा अमृतम। क्या जो लोग वैष्णव नहीं है, जिनका ये कथा करना व्यवसाय बन गया है, यदि हम उनसे कथा कर सुनते हैं तो वह कैसा काम करता है, कहते हैं ये कथाएं जो भगवान की कथाएं हैं, ये अमृत का घड़ा जैसा है। हाँ, तो अमृत क्या होता है, जो एक उनको अमृत बना देता है, अमर बना देता है, मगर यदि उस फूल को कोई सांप छूता है तो वो क्या बन जाता है, फूल का घड़ा उसको जब सांप छूता है तो क्या बन जाता है, वो जहर बन जाता है। तो इसी तरह है, जो अवैष्णव जिसका व्यवसाय है कथा करना पैसों के लिए या किसी लाभ प्रतिष्ठा के लिए, तो वो उस पर कोई असर नहीं हम पर होता है। इसलिए बड़ी कृपा करके हमारे संत लोग जो वहां से आए हैं, उन्हें हम पर बड़ी कृपा किए हैं, जो हर साल यहाँ पर हमें थोड़ा सा समय निकालकर इतने व्यस्त समय में हमें ये कथा ग्रहण करते हैं। तो मेरी आप सब लोगों से ये प्रार्थना है कि कल से आप सब लोग, मैं जितने यहाँ चेहरे देखता हूँ आप सब लोगों को मैं वहां पर भी देखना चाहता हूँ, तो आप लोग आएंगे कि नहीं आएंगे? कुछ लोग बोल रहे नहीं आएंगे, आप सब लोग आएंगे? गुरु जी सुनना चाहते हैं आएंगे कि नहीं आएंगे? सारे बीबी नहीं बोले, आप खड़ा कर बोले आएंगे, कहां पर आएंगे, ग्राम सभा में। तो उन्हें सूचना है, कुछ लोगों का आग्रह है कि गुरु जी से हरिनाम दीक्षा लेने के लिए, तो उनसे मैं प्रार्थना करता हूँ। झुंझुनू ने बोला है कि उनसे प्रार्थना है कि वो परसों 11 तारीख को सोमवार को श्रीराम जी के घर में